एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही दिलचस्प ब्रिटिश दार्शनिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे विचारक जिन्होंने कोशिश की कि दर्शन न आम आदमी की समझ से दूर ना चला जाए, जॉर्ज एडवर्ड मूर या जी.ई. मूर।
जी बिल्कुल, मूर जिनका समय था 1873 से 1958, उनका नाम अक्सर बर्ट्रंड रसल के साथ आता है।
और सही भी है, दोनों में मिलकर एनालिटिक फिलॉसफी, जिसे हम विश्लेषणात्मक दर्शन कहते हैं, उसकी एक तरह से नींव रखी।
हाँ, और मूर ने खास तौर पर नैतिकता और ज्ञान, मतलब एपिस्टेमोलॉजी, इन क्षेत्रों में काफी काम किया।
बिल्कुल, और उनकी सबसे खास बात शायद यही थी, जैसा आपने कहा, कि वो दर्शन को वापस कॉमन सेंस यानी सामान्य ज्ञान की तरफ लाना चाहते थे। हाँ, उस समय के जो बड़े बड़े जटिल सिद्धांत हैं ना, उनके बिल्कुल उलट मूर ने उन सीधी साधी चीज़ों पर जोर दिया जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सच मानते हैं, जैसे कि ये दुनिया सच में है या मेरे दो हाथ हैं।
हाँ, सुनने में शायद आज ये थोड़ा अजीब लगे, पर उस दौर में ये बहुत बड़ी बात थी। उनका मकसद कोई भव्य सिस्टम बनाना नहीं था, वो तो बस चाहते थे कि विचारों में स्पष्टता आए, क्लैरिटी। उनका मानना था कि ज्यादातर दार्शनिक समस्याएं भाषा की अस्पष्टता से पैदा होती हैं।
अच्छा,
या फिर हम सवाल ही ठीक से नहीं समझ पाते, तो एनालिसिस यानी चीजों को खोल कर देखना, बारीकी से समझना, वो उनके लिए सबसे जरूरी था।
तो आज हम मूर के जीवन, उनके मुख्य विचार और उनका क्या असर रहा, इसी पर गहराई से बात करेंगे।
बिल्कुल,
पहले ये समझते हैं कि मूर किस माहौल में सोच रहे थे। 1873 से 1958, ये तो ब्रिटेन में काफी उथल पुथल का दौर रहा होगा। विक्टोरियन युग का अंत, फिर दो विश्व युद्ध।
हाँ बिल्कुल, बौद्धिक स्तर पर भी काफी कुछ चल रहा था। एक तरफ तो विज्ञान, खासकर डार्विन का विकासवाद, पुरानी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे रहा था, और दूसरी तरफ दर्शन में, खासकर ब्रिटिश दर्शन में, जर्मन दार्शनिक हेगल से प्रभावित आदर्शवाद, आइडियलिज्म, उसका बोलबाला था।
आदर्शवाद, ये थोड़ा समझाएंगे आसान शब्दों में, इसका क्या मतलब था? क्या वो ये मानते थे कि दुनिया असली नहीं है, बस एक विचार है?
पूरी तरह ऐसा नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ वैसा ही। देखिए, आदर्शवादियों का मूल विचार ये था कि वास्तविकता, मतलब जो असलियत है, वो मानसिक या आध्यात्मिक है।
अच्छा,
ये जो भौतिक दुनिया हमें दिखती है, वो या तो हमारे मन का ही एक रूप है, या फिर उतनी असली नहीं है जितनी चेतना या विचार। उनका जोर एक एकीकृत, आध्यात्मिक संपूर्ण पर था, और उनकी भाषा अक्सर बहुत अमूर्त होती थी, समझने में मुश्किल।
और इसी माहौल में मूर और रसेल आए और उन्होंने कहा, नहीं भाई, जरा रुको, ये दुनिया असली है, ऐसा कुछ?
हाँ बिल्कुल, एक तरह का विद्रोह था ये। उन्होंने आदर्शवाद की उस अस्पष्टता पर सवाल उठाया, और उसके जो नतीजे निकलते थे, जो कई बार हमारी सामान्य बुद्धि के एकदम खिलाफ जाते थे, उन पर भी। उन्होंने कहा कि दर्शन का काम है तर्क करना, भाषा को साफ करना, चीजों का सटीक विश्लेषण करना। उनके साथियों में रसेल तो थे ही, बाद में विटकिंस्टाइन जैसे लोग भी जुड़े, और हाँ, वो मशहूर ब्लूम्सबरी ग्रुप।
हाँ, वर्जीनिया वुल्फ और जॉन मेनार्ड कीन्स वाला ग्रुप।
जी वही, उस ग्रुप के लोग तो मूर को अपना एक तरह से बौद्धिक और नैतिक गुरु मानते थे।
अच्छा,
तो मूर पढ़े लिखे कहाँ, उनका अकेडमिक सफर कैसा रहा? सुना है रसेल ने उन्हें दर्शन की तरफ खींचा था।
जी हाँ, मूर एक शिक्षित परिवार से थे, उनके पिता डॉक्टर थे। उन्होंने पहले डलविच कॉलेज में पढ़ाई की, फिर स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज गए।
वहाँ वो क्लासिक्स पढ़ रहे थे, यानी प्राचीन यूनानी और लातिनी साहित्य। वहीं उनकी मुलाकात बर्ट्रंड रसेल से हुई। रसेल पहले से ही दर्शन में रुचि रखते थे, और उन्होंने ही मूर को इस तरफ मोड़ा।
लेकिन मजे की बात यह है कि शुरू में तो मूर खुद आदर्शवादी थे, है ना?
हाँ, ये दिलचस्प है। कुछ समय तक वो F.H. ब्रैडली जैसे बड़े आदर्शवादी दार्शनिकों से काफी प्रभावित रहे, लेकिन जल्दी ही उनका मोह भंग हो गया, और फिर वो आदर्शवाद के सबसे बड़े आलोचकों में से एक बन गए।
और उनका पूरा करियर कैम्ब्रिज में ही बीता,
लगभग पूरा। पहले छात्र, फिर 1898 में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो बने, और फिर 1925 से 1939 तक वहीं दर्शन के प्रोफेसर रहे। और एक और बड़ी बात, वो 1921 से 1947 तक, मतलब 25 साल से भी ज्यादा, माइंड नाम की बहुत ही प्रतिष्ठित दर्शन पत्रिका के संपादक रहे।
अरे वाह
जी, उस पत्रिका ने उस दौर के दार्शनिक विचारों को दिशा देने में बहुत अहम भूमिका निभाई और वो कैम्ब्रिज अपोस्टल्स नाम के एक गुप्त बौद्धिक समूह के सदस्य भी थे जो उस समय के सबसे तेज दिमागों का अड्डा माना जाता था।
चलिए अब आते हैं उनके मुख्य कामों और विचारों पर। 1903 का साल आपने कहा बहुत जरूरी था।
बहुत ज्यादा। उस साल उनके दो ऐसे काम प्रकाशित हुए जिन्होंने तहलका मचा दिया। पहला था एक निबंध आदर्शवाद का खंडन, द रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। इसमें उन्होंने सीधे सीधे आदर्शवाद के उस मूल विचार पर हमला किया कि किसी चीज का होना उसके अनुभव किए जाने पर निर्भर करता है। मतलब एसे एस्ट परचिपी, टू बी इज टू बी परसीव्ड।
अच्छा।
मूर ने तर्क दिया कि नहीं, ये दो अलग बातें हैं, किसी चीज का अनुभव करना और उस चीज का स्वतंत्र रूप से मौजूद होना। मेरा इस कुर्सी को देखना एक बात है और इस कुर्सी का मेरे देखने से अलग स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखना दूसरी बात है।
हाँ, ये बात तो सीधी लगती है।
जी, इसने यथार्थवाद यानी रियलिज्म को फिर से मजबूती दी। और दूसरा बड़ा काम था उनकी किताब प्रिंसिपिया एथिका।
हाँ, ये तो बहुत मशहूर है, कहते हैं इसने नैतिकता के दर्शन को ही बदल दिया।
बिल्कुल। प्रिंसिपिया एथिका में मूर ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा, अच्छा क्या है? और उनका जवाब था कि अच्छा एक मौलिक गुण है, सरल अपरिभाषित गुण, जैसे पीला रंग।
पीला रंग मतलब?
मतलब जैसे आप पीले रंग को किसी और चीज के जरिए परिभाषित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि पीला मतलब फला वेवलेंथ की रोशनी। आप पीला रंग देखते हैं और बस पहचानते हैं कि ये पीला है।
अच्छा, हाँ।
वैसे ही मूर ने कहा, अच्छा एक ऐसा ही सरल गैर प्राकृतिक गुण है, आप उसे किसी और चीज से परिभाषित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा का मतलब है जो खुशी दे, या जो ईश्वर को पसंद हो, या जो विकास में सहायक हो।
तो ये कहना कि जो चीज खुशी देती है वही अच्छी है, ये गलत है?
मूर के हिसाब से बिल्कुल गलत। इसे ही उन्होंने प्रकृतिवादी दोष, नेचुरलिस्टिक फैलेसी कहा। उनका तर्क बड़ा सीधा था। मान लीजिए कोई कहता है कि अच्छा का मतलब है खुशी देने वाला, तो मूर कहते हैं आप हमेशा ये सवाल पूछ सकते हैं, हाँ ये चीज खुशी तो देती है पर क्या ये अच्छी है? अगर ये सवाल समझ में आता है, अगर ये खुला प्रश्न है जिसका जवाब हाँ या ना हो सकता है, तो इसका मतलब है कि अच्छा और खुशी देने वाला एक ही चीज नहीं है।
अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प तर्क है। इसे ही खुला प्रश्न तर्क, ओपन क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट कहते हैं।
जी हाँ। और मूर का मानना था कि अच्छा क्या है ये हम सीधे अपनी सहज बुद्धि, अपने इंट्यूशन से जानते हैं।
ये इंट्यूशन वाली बात थोड़ी मुश्किल लगती है, इस पर हम थोड़ी देर में फिर से आते हैं। लेकिन पहले 1925 का उनका एक और मशहूर निबंध है, सामान्य ज्ञान का बचाव, अ डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस।
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मूर ने उन दार्शनिकों को जवाब दिया जो हर चीज पर शक करते हैं, जिन्हें स्केप्टिक कहते हैं, जो कहते हैं कि हमें कैसे पता कि हम सपना नहीं देख रहे, या ये बाहरी दुनिया सच में है भी या नहीं।
हाँ, ये तो दार्शनिकों के पसंदीदा सवाल हैं।
जी, तो मूर ने कहा, भाई ये सब फिजूल की बातें हैं, हम सब जानते हैं और पूरी निश्चितता के साथ जानते हैं कि ये पृथ्वी लाखों सालों से मौजूद है। हम जानते हैं कि हमारे जैसे और भी इंसान हैं जिनके अपने शरीर हैं, अपने विचार हैं। हम जानते हैं कि हमारे अपने शरीर हैं। ये सब सामान्य ज्ञान की बातें हैं और इन पर हमारा भरोसा किसी भी दार्शनिक शख्स से कहीं ज्यादा मजबूत और पक्का है।
तो वो कह रहे थे कि दर्शन को इन बुनियादी बातों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए।
हाँ, या कम से कम ये मानना चाहिए कि इन बातों को झुठलाना बहुत मुश्किल है। किसी दार्शनिक सिद्धांत को इतना वजन नहीं देना चाहिए कि वो हमारी रोजमर्रा की सबसे पक्की सच्चाइयों को ही नकार दे।
और फिर आया उनका वो सबसे नाटकीय तर्क, है ना, 1939 का लेक्चर, बाह्य जगत का प्रमाण।
हाँ, वो तो गजब का था। आप सोचिए, एक भरी सभा है, दार्शनिक बैठे हैं, शक करने वालों को जवाब देना है, और मूर क्या करते हैं? वो बस अपना एक हाथ उठाते हैं और कहते हैं यहाँ एक हाथ है। फिर वो अपना दूसरा हाथ उठाते हैं और कहते हैं और यहाँ दूसरा हाथ है।
बस इतना ही?
हाँ, और फिर वो निष्कर्ष निकालते हैं, देखिए ये दो हाथ मौजूद हैं, हाथ बाहरी वस्तुएं हैं, इसलिए कम से कम दो बाहरी वस्तुएं मौजूद हैं, और अगर दो बाहरी वस्तुएं मौजूद हैं तो तो इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया का अस्तित्व है। प्रूफ हो गया।
ये तो कमाल का सीधा तर्क है, लेकिन क्या इससे दार्शनिक मान गए? मुझे शक है।
आपका शक बिल्कुल सही है। बहुत से दार्शनिकों ने कहा, अरे भाई ये कोई सबूत थोड़ी हुआ, आप तो पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि आपका हाथ सचमुच मौजूद है और वो बाहरी दुनिया का हिस्सा है। यही तो वो बात है जिस पर स्केप्टिक शक कर रहा है।
हाँ, इसे शायद सवाल को ही जवाब मान लेना कहते हैं, बेगिंग द क्वेश्चन।
बिल्कुल, मोर का तर्क उसी बात को सच मान लेता है जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस बेहद सरल लगने वाले तर्क ने दशकों तक दार्शनिकों को उलझाए रखा। इस पर इतनी बहस हुई है कि पूछे मत। ये दिखाता है कि मूर कितने मौलिक ढंग से सोचते थे।
तो अगर हम मूर के मुख्य योगदानों को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? तीन मुख्य बातें।
हाँ, मेरे हिसाब से तीन बातें उभर कर आती हैं। पहला, नैतिकता के क्षेत्र में उन्होंने प्रकृतिवादी दोष की पहचान की और ये विचार दिया कि अच्छा एक सरल अपरिभाषित गैर प्राकृतिक गुण है जिसे हम इंट्यूशन से जानते हैं। इसने मेटा एथिक्स की नींव रखी, यानी नैतिक भाषा का अध्ययन।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, सामान्य ज्ञान का बचाव। ये विचार कि दर्शन को हमारी रोजमर्रा की बुनियादी सच्चाइयों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए।
और तीसरा?
तीसरा, दार्शनिक विश्लेषण की विधि पर जोर। उनका कहना था कि बड़े बड़े सिद्धांत बनाने से ज्यादा जरूरी है अपनी भाषा और अपनी अवधारणाओं को साफ करना, सावधानी से विश्लेषण करना कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों। स्पष्टता, क्लैरिटी, ये उनका मूल मंत्र था।
और उस समय के बाकी दार्शनिकों से उनकी तुलना कैसे करेंगे, जैसे विटगेंस्टाइन या जो यूरोप में दूसरे दार्शनिक थे?
देखिए, रसेल के साथ मिलकर तो उन्होंने आदर्शवाद को चुनौती दी और विश्लेषणात्मक दर्शन का रास्ता खोला। ये दर्शन तर्क और भाषा के विश्लेषण पर केंद्रित था। ये उस समय यूरोप में चल रहे दर्शन जैसे हिडेगर या सार्त्र के अस्तित्ववाद से काफी अलग था। वो दर्शन ज्यादा व्यापक, ज्यादा साहित्यिक किस्म का था।
और विटगेंस्टाइन?
विटगेंस्टाइन शुरू में मूर और रसेल दोनों से प्रभावित थे, खासकर मूर के सामान्य ज्ञान के बचाव से। लेकिन बाद में उनके रास्ते कुछ अलग हो गए। विटगेंस्टाइन भाषा के रोजमर्रा के इस्तेमाल पर और ज्यादा ध्यान देने लगे, जिसे मूर शायद उतना महत्व नहीं देते थे।
और आपने ब्लूम्सबरी ग्रुप का जिक्र किया था।
हाँ,
उनके लिए मूर इतने खास क्यों थे?
हाँ, ब्लूम्सबरी ग्रुप जिसमें कीन्स, वर्जीनिया वुल्फ, लिटन स्ट्रेची जैसे लेखक, कलाकार, अर्थशास्त्री थे, वो मूर की ईमानदारी, उनकी बौद्धिक स्पष्टता से बहुत प्रभावित थे। और खासकर प्रिंसिपिया एथिका के अंत में जो मूर ने कहा था कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें हैं दोस्ती और सौंदर्य का अनुभव। ये विचार उस ग्रुप के लिए एक तरह का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया।
अच्छा, तो वो सिर्फ अकादमिक दार्शनिक नहीं थे, उनका असर संस्कृति पर भी पड़ा।
बिल्कुल।
आज के समय में मूर कितने प्रासंगिक हैं? क्या उनके विचार अब भी काम के हैं?
हाँ बिल्कुल है। पहली बात तो ये कि विश्लेषणात्मक दर्शन, जिसकी नींव रखने में उनका बड़ा हाथ था, आज भी अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया में दर्शन की मुख्य धारा है। दूसरी बात, प्रिंसिपिया एथिका ने मेटा एथिक्स के पूरे क्षेत्र को जन्म दिया, जो आज भी दर्शन की एक अहम शाखा है। प्रकृतिवादी दोष पर आज भी नैतिकता की हर क्लास में चर्चा होती है।
और वो सामान्य ज्ञान वाली बात, आज की दुनिया में जहां फेक न्यूज है, विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है, हमारा अपना अनुभव कुछ कहता है, क्या मूर की बात यहां कुछ मदद करती है?
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्ञान में मानसा में, यानी ज्ञान के सिद्धांत में, संदेहवाद स्केप्टिसिज्म पर जो बहस चलती है, उसमें मूर आज भी एक अहम रेफरेंस पॉइंट है। उनका वो हाथ वाला तर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी इंद्रियों और अपनी सामान्य बुद्धि पर कितना और कब भरोसा करें। शायद आज ये सवाल और भी जरूरी हो गया है।
हाँ, ये तो है।
भले ही उनके नैतिक इंट्यूशनिज्म को आज कम लोग मानते हों, लेकिन स्पष्टता, सटीकता और विश्लेषण पर उनका जो जोर था, वो आज भी किसी भी क्षेत्र में सोचने समझने वालों के लिए बहुत जरूरी है।
उनके कुछ मशहूर कथन अगर हम याद करना चाहें जो उनके विचारों का सार बताते हों।
एक तो वही प्रिंसिपिया एथिका वाला, यदि मुझसे पूछा जाए अच्छा क्या है, मेरा उत्तर है कि अच्छा अच्छा है और यही बात का अंत है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये उनके मूल विचार को एकदम साफ करता है।
हाँ, और वो हाथ वाला?
जी, बाह्य जगत का प्रमाण से मैं अब साबित कर सकता हूं कि दो मानव हाथ मौजूद हैं। कैसे? अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कहना, यहाँ एक हाथ है और यहाँ दूसरा है। ये उनके सामान्य ज्ञान वाले दृष्टिकोण का प्रतीक है।
और एक वो जो ब्लूम्सबरी ग्रुप को पसंद आया था।
हाँ, प्रिंसिपिया एथिका के अंत से अब तक की सबसे मूल्यवान चीजें जिन्हें हम जानते हैं या कल्पना कर सकते हैं, मानवीय संपर्क के सुख और सुंदर वस्तुओं का आनंद है। ये उनके मूल्यों को दिखाता है, दोस्ती, प्यार, कला का महत्व।
लेकिन जाहिर है उनके विचारों की आलोचना भी हुई होगी, खासकर वो इंट्यूशन वाली बात कि अच्छा क्या है ये हम बस जान लेते हैं, ये थोड़ा भरोसेमंद नहीं लगता।
हाँ, आलोचनाएं तो खूब हुई हैं और आज भी होती हैं। पहली आपत्ति तो यही उठती है कि ये इंट्यूशन या सहज बुद्धि आखिर है क्या बला? ये बहुत रहस्यमयी लगती है। अगर दो लोगों का इंट्यूशन अलग अलग बातें कह रहा है तो फैसला कैसे होगा, कौन सही है, इसका कोई तरीका मूड नहीं बताते। आलोचक कहते हैं कि ये जो गैर प्राकृतिक गुण है, अच्छा, ये बड़ा अजीब क्वेयर है। हमारी जानी पहचानी वैज्ञानिक दुनिया में ये फिट कहाँ होता है? इसे हम कैसे जांचें, कैसे परखें?
और सामान्य ज्ञान वाले प्रमाण की भी आलोचना हुई है, जैसा आपने बताया था।
बिल्कुल, ज्यादातर दार्शनिक मानते हैं कि वो हाथ दिखाना कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं था। वो स्केप्टिक के मूल सवाल का जवाब नहीं देता कि कहीं हमारी पूरी इंद्रियानुभूति ही एक धोखा तो नहीं।
और प्रकृतिवादी दोष पर भी बहस जारी है।
हाँ, उस पर भी बहस है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि मूर ने शायद थोड़ी जल्दबाजी की। हो सकता है अच्छा को किसी न किसी रूप में प्राकृतिक गुणों से जोड़ने के तरीके हों जिन्हें मूर ने नजरअंदाज कर दिया। इस पर आज भी काम हो रहा है।
मूर के व्यक्तित्व के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं, कुछ किस्से।
हाँ, कई हैं। कहते हैं वो बहुत ज्यादा एकाग्र होकर सोचते थे और सोचते हुए अक्सर जोर जोर से बोलते या बुदबुदाते हुए टहलते रहते थे।
अच्छा।
एक मशहूर किस्सा है कि वो कभी कभी बहुत ही मामूली सवालों पर घंटों अटक जाते थे। जैसे एक बार किसी ने पूछा, चाय लेंगे या कॉफी, तो कहते हैं उन्होंने पूरी शाम इसी पर विचार करने में लगा दी।
अरे बाप रे, ये तो कमाल है।
जी, बर्टन रसल ने उनके बारे में लिखा कि वो अविश्वसनीय रूप से ईमानदार थे, उनमें एक तरह की देवदूत जैसी पवित्रता थी। रसल ने मजाक में ये भी लिखा कि उन्होंने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मूर से झूठ बुलवाया था, वो भी बड़ी मुश्किल से।
अच्छा।
दार्शनिक चर्चाओं के दौरान उनके चेहरे पर अक्सर गहरी उलझन का भाव रहता था, जैसे वो सचमुच हैरान हो कि लोग इतनी अजीब, इतनी अविश्वसनीय बातें कैसे सोच सकते हैं या कह सकते हैं। कैम्ब्रिज में उनकी शनिवार शाम की बैठकें बहुत मशहूर थीं, जहां गंभीर दार्शनिक बहसें होती थीं, और इन्हीं बैठकों ने ब्लूम्सबरी ग्रुप को बहुत प्रभावित किया।
तो कुल मिलाकर जी, जी.ई. मूर हमें याद दिलाते हैं कि सोचने में स्पष्टता कितनी जरूरी है, और अपनी सामान्य बुद्धि की आवाज सुनना, और साथ ही बड़े बड़े दावों पर सवाल उठाना भी कितना जरूरी है।
बिल्कुल, और शायद आज के इस दौर में जब हमारे पास सूचनाओं का अंबार है, विशेषज्ञों की अलग अलग राय है, और कभी कभी हमें अपनी ही समझ पर शक होने लगता है, तब मूर का ये सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है। हमें अपनी सीधी साधी समझ और अपने अनुभव पर कब और कितना भरोसा करना चाहिए, और कब हमें रुककर विशेषज्ञों की सुनकर या गहरे विश्लेषण की जरूरत है।
हाँ, ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल है।
जी, ये संतुलन साधना शायद आज की सबसे बड़ी बौद्धिक चुनौतियों में से एक है, और मूर हमें इसी संतुलन के बारे में सोचने के लिए उकसाते हैं। एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं वो हमारे लिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।